नमस्कार भारत, 2 अक्टूबर बुधवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। हांगकांग में प्रदर्शन फिर हुए हिंसक, पुलिस ने पहली बार चलाई गोली। बाढ़ के बाद संक्रामक बीमारियों से निपटने को कितना तैयार बिहार,
जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया और डेंगू या मच्छर जहां पे चुकी जमते हैं। पानी जाने के बाद जो खतरा रहता है वो पानी रहने के समय के खतरे से कई गुना ज्यादा है।
लेंगे यूपी का भी हाल और आज गांधी जयंती पर सुनिएगा उनका लंदन में नाचने का किस्सा।
गांधी ने कहा, जरूर मैं नाचूंगा लेकिन एक शर्त पर कि मेरा जोड़ीदार मेरी छड़ी होगी।
अखबारों की समीक्षा भी होगी लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। हांगकांग में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने कल हिंसक रूप ले लिया। हांगकांग के स्वेन वान जिले में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एक पुलिस अधिकारी ने गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में एक 18 वर्षीय युवक के घायल होने की खबर है। इसके साथ ही कम से कम 51 अन्य लोगों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पेरू में सैन्य पुलिस बल ने सांसदों को कांग्रेस के भीतर जाने से रोक दिया। इससे एक दिन पहले ही राष्ट्रपति मार्टिन विज्कारा ने चैम्बर को भंग कर दिया था। इस बीच करीब 20 सांसद अभी भी संसद के भीतर ही मौजूद हैं और उन्होंने बाहर जाने से इनकार कर दिया है। संसद के आसपास की सड़कों पर सैन्य बल तैनात कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने यह कहते हुए संसद को बंद कर दिया था कि विपक्षी सांसद भ्रष्टाचार विरोधी कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति मर्सिडीज आरोज ने बीबीसी से कहा है कि उन्हें कांग्रेस से अपना सामान भी नहीं लेने दिया गया।
Right now they are only accepting Congress women and men that are members of the permanent commission.
फिलहाल वो सिर्फ उन्हीं सांसदों को जाने दे रहे हैं जो परमानेंट कमीशन के सदस्य हैं। कांग्रेस की चाबी पुलिस के पास है। मुझे अपने दफ्तर में नहीं जाने दिया गया। मेरी किताबें और पूरा सामान वहीं रखा है। मुझे कुछ भी लेने नहीं दिया गया। ये थे पेरू की उपराष्ट्रपति मर्सिडीज आरोज के शब्द। नीदरलैंड में हजारों किसानों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया है। ये किसान अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर हेग तक आए हैं। किसान इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने उन पर नाइट्रोजन प्रदूषण फैलाने का झूठा आरोप लगाया है। मई में देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि नीदरलैंड यूरोपियन उत्सर्जन नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में कुछ सुझाव दिए गए थे कि कुछ पशु फार्म को बंद कर देना चाहिए। एक किसान ने बताया कि वो क्यों इन सुझावों को नहीं मानना चाहते। हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार और अधिक हवाई जहाज़ों को उड़ाने की इजाज़त दे रही है। उन पर कोई रोक नहीं है जबकि वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। इतना ही नहीं, कई फैक्ट्रियां हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं। उन्हें बंद करने को नहीं कहा गया लेकिन सिर्फ किसानों को यह सब कहा जा रहा है। वो चाहते हैं कि हम अपने पशुओं को भी छोड़ दें। ये थे एक किसान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी छोर से समुद्र की तरफ कम दूरी वाली कम से कम एक मिसाइल दागी है। वहीं जापान के सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि उन्हें लगता है उत्तर कोरिया ने दो मिसाइलें दागी थीं जिनमें से एक जापान के नियंत्रण वाले समुद्र में गिरी हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने इसकी निंदा की है। ये फायरिंग उस घोषणा के बाद कुछ घंटों बाद हुई है जिसमें प्योंगयांग ने बताया था कि इस हफ्ते के बाद वो अमरीका के साथ दोबारा बातचीत शुरू करेंगे। ब्रिटेन में प्रिंस हैरी की पत्नी मेघन ने एक अखबार के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस अखबार ने उनकी इजाज़त के बिना उनका एक निजी पत्र प्रकाशित कर दिया था। प्रिंस हैरी ने कहा है कि वो और उनकी पत्नी मेघन के खिलाफ यह एक दुष्प्रचार की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अखबार ने जानबूझकर मेघन के पत्र के कुछ खास अंशों को ही प्रकाशित किया। वहीं समाचार पत्र का कहना है कि वह अपनी स्टोरी के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं और किसी भी कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार हैं। माली की सरकार ने बताया है कि बुर्किना फासो के साथ लगी सीमा में जिहादियों ने दो मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया जिसमें कम से कम 26 सैनिक मारे गए जबकि 60 अन्य लापता हैं। इस इलाके में अभी भी सेना और जिहादियों के बीच संघर्ष चल रहा है। सरकार का कहना है कि उनके बहुत से हथियार भी लूट लिए गए हैं। साल 2012 से ही माली में जिहादियों और सेना के बीच संघर्ष चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस माली में लगातार बढ़ती हिंसा पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत। मैं हूं कुलदीप मिश्र। कार्यक्रम की शुरुआत हांगकांग से, जहां एक झड़प में एक पुलिसकर्मी ने एक प्रदर्शनकारी पर गोली चला दी, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती है। ये पहली बार है जब हांगकांग में बीते करीब 4 महीने से चल रहे प्रदर्शनों में पुलिस ने जिंदा कारतूस का इस्तेमाल किया है। ये लोग चीनी कम्युनिस्ट शासन की 70वीं सालगिरह पर प्रदर्शनों पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ब्यौरा सुनिए नवीन नेगी से।
हांगकांग में पिछले कई महीनों से लोकतंत्र के समर्थन में चल रहा विरोध प्रदर्शन कल अचानक उस वक्त हिंसक हो उठा जब एक पुलिस अधिकारी ने अपनी हैंडगन से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें एक 18 वर्षीय युवक के घायल होने की खबर है। इस युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके साथ ही कम से कम 51 अन्य लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस अधिकारी ने अपने बचाव में गोलियां चलाईं। हांगकांग पुलिस की प्रवक्ता योलांडा यू ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने उस पुलिस अधिकारी पर हमला किया था और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए यह कदम उठाया। ताई हो रोड में शाम के लगभग 4 बजे दंगाइयों के एक समूह ने पुलिस अधिकारियों पर हमला शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें बहुत चेतावनी दी लेकिन वो नहीं माने। उस समय पुलिस अधिकारियों की जिंदगी भी खतरे में दिख रही थी। अपनी और अपने साथियों की जान बचाने के मकसद से एक पुलिस अधिकारी ने गोलीबारी शुरू कर दी। ये थे हांगकांग पुलिस की प्रवक्ता योलांडा यू के शब्द। दरअसल चीन में वामपंथी शासन के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा कि वह हांगकांग में खुशहाली और स्थिरता देखना चाहते हैं। जब शी जिनपिंग यह भाषण दे रहे थे तो दूसरी तरफ हांगकांग में प्रदर्शनकारी इसे एक काले दिवस के तौर पर मना रहे थे। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस, रबर बुलेट के साथ साथ गोलीबारी का इस्तेमाल भी किया। हांगकांग की विधान परिषद के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता एडी चू कहते हैं कि राष्ट्रपति के भाषण में सिर्फ झूठ सुनाई देता है। मुझे सिर्फ पाखंड की बातें, झूठे वायदे ही सुनाई दिए, क्योंकि एक देश दो शासन के तहत हांगकांग के लोगों को पूर्ण लोकतंत्र का वादा किया गया था। हांगकांग में खुशहाली लाने का एक ही तरीका है, यहाँ के लोगों को उनका हक दिया जाए। ये थे हांगकांग की विधान परिषद के सदस्य एडी चू के शब्द। हांगकांग में बीते 4 महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। पहले प्रदर्शनकारी विवादित प्रत्यर्पण कानून के विरोध में सड़कों पर थे, इसे सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी सड़कों पर हैं। वे पूर्ण लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं। बीते 4 महीनों में पहली बार इस विरोध प्रदर्शन में गोलीबारी हुई है, जिसमें एक शख्स घायल हुआ है।
ब्यौरा सुना रहे थे नवीन नेगी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बाढ़ और बरसात की वजह से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। यहां जेल परिसर में पानी भर जाने के कारण सभी कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट करना पड़ा है। वहीं बाढ़ के कारण कई गांव भी जलमग्न हैं। बरसात रुकने के बाद स्थिति सुधर जरूर रही है, लेकिन सुधार की गति बहुत धीमी है। बलिया से समीरात्मज मिश्र।
मंगलवार रात करीब 9 बजे बलिया के पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय के बाहर खड़े होकर परिसर के अंदर भरा पानी निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, इस उम्मीद में कि पानी निकलने के बाद शायद 1-2 दिनों में दफ्तर में काम कर सकें, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो अपने घर पर ही कंट्रोल रूम बनाकर जिले की पुलिस व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अलावा रिजर्व पुलिस लाइन, फायर स्टेशन और जिला जेल समेत शहर के तमाम इलाके पिछले कई दिनों से जलमग्न हुए पड़े हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण शहर के बाहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ आफत बनकर आई है। बलिया के अतिरिक्त जिलाधिकारी राम आसरे बताते हैं,
हमारे यहाँ जो बाढ़ से करीब लगभग 102 गांव प्रभावित हुए हैं और 272,776 जनसंख्या जो है प्रभावित हुई है, जिसमें हम लोगों ने 147,490 लंच पैकेट का वितरण किया है और 30,986 लोगों को खाद्यान्न का पैकेट वितरण किया गया है। जल भराव हमारे यहाँ जो है, जो 4-5 दिन लगातार बारिश हुआ है, उससे जैसे ये काजीपुरा है, वो काजीपुरा में तो चूँकि नीचे है भी तो वहाँ और विकट स्थिति हो गई थी, और यहाँ जेल में तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, यहाँ तक कि सबके जो बैरक्स में जो है पानी भर गया आधा फुट। 500 कैदियों को हम लोगों ने आजमगढ़ जेल में भेजा गया है और शेष जो है 368 कैदियों को अंबेडकर नगर जेल।
काजीपुरा, टैगोर नगर, जॉपलिनगंज जैसे कई इलाकों में लोग इधर उधर जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। एक स्थानीय नागरिक बताते हैं,
इससे पहले तो इतना नहीं था लेकिन इस समय इतना जबरदस्त हुआ है कि ये पुलिस लाइन के साथ साथ जितनी भी कॉलोनियां इसके अगल बगल है सारे डूब चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी है, इसी के वजह से सभी लोग अपने अपने कई दूसरे स्थान पर चले गए हैं।
बलिया में DM, SP कार्यालय, पुलिस लाइन इत्यादि इलाके यहाँ के टैगोर नगर मोहल्ले में आते हैं। स्थानीय पार्षद सुमित मिश्र कहते हैं कि इस स्थिति की आशंका पहले से थी लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया।
फरवरी से मैं इसके लिए प्रयासरत था कि यहाँ से लेकर और कटहल नाले तक नाले की सफाई हो जाए। आप आगे बढ़ के देखेंगे कोचिंग चौराहे से लेकर कटहल नाले तक पूरा नाला डैमेज हुआ है, दोनों साइड की दीवारें आपस में चिपक चुकी है और पानी बहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है।
वहीं दूसरी ओर शहर के बाहरी और ग्रामीण इलाके गंगा नदी में आई बाढ़ का सामना कर रहे हैं। फसलों को काफी नुकसान हुआ है और अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस लाइन के विभिन्न परिसरों में जलभराव के लिए ADM राम आसरे शहर के ड्रेनेज सिस्टम को जिम्मेदार मानते हैं।
प्रायः हर साल आती है क्योंकि बलिया में सीवर सिस्टम अभी चालू है नहीं, न तो पूरा बना ही है। अब चूंकि लगातार 4 दिन बारिश होती रही तो जिन नालियों से पानी निकलता था वो भी लबालब बह रही थी, अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है।
कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश से जनपद के अन्य हिस्सों की तरह बसंतपुर स्थित जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर भी जलभराव की चपेट में आ गया। विश्वविद्यालय में 3 अक्टूबर तक के लिए छुट्टी कर दी गई है। फायर स्टेशन के भीतर आग बुझाने वाली गाड़ियां पानी में इस कदर डूबी हैं कि वो खुद बुझी हुई लग रही हैं। लेकिन फायर ऑफिसर धीरेंद्र यादव दावा करते हैं कि वक्त आने पर ये अपना काम करेंगी।
गैराज में 2 गाड़ियां हैं, वो खड़ी हैं, उनके पीछे भी गाड़ियां हैं, खड़ी हैं। इसके
सब वर्किंग कंडीशन में
है, वर्किंग कंडीशन में है।
बहरहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अभी पंप के जरिए परिसरों में जमा पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर मौसम वैज्ञानिकों की अभी और बारिश हो सकने की चेतावनी ने शहर के लोगों को परेशान कर रखा है। समीर आत्मज मिश्र, BBC बलिया।
उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाढ़ से जूझ रहे हैं बिहार के भी कई इलाके। बिहार में भारी बारिश के बाद पानी की निकासी से चूकी सरकार अब महामारी के लिए कितनी तैयार है। राजधानी पटना के कई इलाकों में अब भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन एक नई चिंता घर बना रही है और वो है गंदे पानी की वजह से संक्रमण की आशंका। पटना से नीरज सहाय की रिपोर्ट।
बिहार सरकार के शहरी आवास विभाग और पटना नगर निगम में व्याप्त गहरे भ्रष्टाचार की वजह से राजधानी में मात्र 3 दिनों की बारिश ने नाला उड़ाही से लेकर सीवर निर्माण कार्य तक की पोल खोल दी और पटना जलमग्न हो गया। भारी जल जमाव के बाद सरकार हरकत में आई है, लेकिन अब पटना की असली समस्या यह है कि पूरे जलमग्न इलाकों में गंदे पानी से होने वाली जो बीमारी और महामारी फैलेगी उससे निपटने के लिए प्रशासन कितनी तैयार है। NMCH अस्पताल के डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा का मानना है कि किसी भी इलाके में जल जमाव की तुलना में उसके बाद की स्थिति ज्यादा खतरनाक होती है।
सबसे ज्यादा डर है संक्रामक रोग बीमारियों से, जो वाटर बॉर्न डिजीज है, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफॉइड हो गया और डेंगू या मच्छर जहां पे चुकी जमते हैं, तो ऐसे बीमारियों का अभी अगले पानी जाने के बाद खतरा होने का चांस ज्यादा है। पानी जाने के बाद जो खतरा रहता है वो पानी रहने के समय के खतरे से कई गुना ज्यादा है।
विषम परिस्थितियों के बीच राज्य सरकार ने दावा किया है कि बीमारी और महामारी से बचाव के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार इस संबंध में विस्तार से बताते हैं।
एंटी लार्वासाइडल छिड़काव की भी तैयारी की गई है ताकि मच्छरों का जन्म पानी में न हो। इसके अतिरिक्त सिविल सर्जन के द्वारा 10 ऐसी ग्रुप्स तैयार किए गए हैं जिनका कार्य रहेगा छिड़काव। तो एहतियात बहुत ही आवश्यक है।
3-4 महीने पहले गर्मियों में जब मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का प्रकोप हुआ था तब राज्य सरकार के दावे की धज्जियां उड़ गई थीं। 200 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी और तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था हांफती सी नजर आ रही थी। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि इस साल गर्मी में पटना नगर निगम ने नाला उड़ाही अभियान चलाया, लेकिन यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और पटना का सीवरेज ध्वस्त हो गया। वरिष्ठ पत्रकार एस एशाद महामारी की आशंका जताते हैं।
गवर्नमेंट मशीनरी कितना सक्षम है अप्रैल से जून के महीने तक में, हम लोगों को एक अंदाजा उसका हल्का मिला था जब मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाके में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से बच्चे मर रहे थे। आम आदमी ये भरोसा नहीं कर पाएगा कि महामारी से निपटने के लिए नगर निगम उतनी ही तत्परता से सामने आएगा जितना कि उसको आना चाहिए।
तमाम दलीलों के बीच अब देखना यह है कि सरकारी तंत्र भीषण बारिश के बाद राजधानी पटना को महामारी से बचाने में कितना सफल रहता है। नीरज सहाय, बीबीसी पटना।
देश के कई राज्यों में एनआरसी को लागू करने की सुगबुगाहट और बयानबाजियों के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस को कहा गया है कि वो बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान करें ताकि उन्हें प्रत्यर्पित किया जा सके। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने जिला पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए अहम बताया है। प्रदेश में ये कितनी बड़ी समस्या है और क्या इसका प्रदेश में होने वाले उपचुनावों से कोई संबंध है, सुनिए संदीप राय की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश डीजीपी ने बांग्लादेशी और विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने का फरमान जारी किया है। हालांकि राज्य में असम की तरह एनआरसी लागू करने पर कोई साफ बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ताजा आदेश एनआरसी लागू करने का उत्तर प्रदेश का अपना वर्जन हो सकता है। लेकिन इस वक्त ऐसे विवादास्पद कदम की घोषणा करना हैरानी नहीं पैदा करता, क्योंकि बीजेपी का ये चुनावी मुद्दा रहा है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव समेत राज्य में भी 11 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता का कहना है कि प्रदेश में अभी 11 विधानसभा उपचुनाव होने हैं और योगी सरकार इसी के मद्देनजर अपनी चुनावी जमीन तैयार करना चाहती है।
11 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 370 ऑलरेडी एक इशू है इन चुनावों में। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एनआरसी 370 और बांग्लादेशी घुसपैठिए। लगातार योगी और अमित शाह ये कहते रहे हैं कि हमें पूरे देश में जहां पॉसिबल होगा तो एनआरसी हम कराएंगे और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करेंगे। हालांकि वो इस चीज से मना कर रहे हैं कि इसका एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक यूफोरिया क्रिएट करना चाहते हैं।
अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, इसके बाद दिल्ली और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अपने चुनावी एजेंडे को मजबूत करने की बीजेपी की कोशिश हमेशा से रही है और इस समय कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे के छिनने का मामला पहले से गर्म है। शरद गुप्ता का कहना है कि इस समय बीजेपी के 3 एजेंडे हैं,
कश्मीर, पाकिस्तान और मुसलमान। तो बांग्लादेशी घुसपैठिए मतलब मुसलमान, एक तरीके से वो एक इसको उनका पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको वो फुलफिल करना चाहते हैं और ठीक उपचुनाव से पहले। महाराष्ट्र और हरियाणा के जो चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद दिल्ली और झारखंड में भी चुनाव होने, तो उन सब की जमीन एक तैयार की जा रही है।
हालांकि यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह का कहना है कि विदेशी नागरिकों का मामला बहुत पुराना है और ये समस्या पहले से रही है। उनके अनुसार अन्य देशों के नागरिकों के अलावा ऐसे पाकिस्तानी नागरिक भी हैं जो यहाँ आने के बाद लौटे नहीं। ये यूपी ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। लेकिन क्या यूपी पुलिस प्रत्यर्पण करा सकती है? प्रकाश सिंह का कहना है कि विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने का काम हो भी जाए तो भी उन्हें प्रत्यर्पित करना एक टेढ़ा काम है।
पता नहीं बांग्लादेशी कैसे डिपोर्ट करेंगे, बांग्लादेशी के डिपोर्टेशन के लिए तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ऐसे यूपी पुलिस तो कर नहीं सकती। ये मतलब आज से नहीं, ये 25 साल से समस्या चली आ रही है। बांग्लादेश की समस्या तो राष्ट्रीय स्तर पर इनको समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश से मतलब भारत का क्या कुछ मतलब, पहले तो कुछ करनी पड़ेगी कि हम इनको भेज रहे हैं और वो लेंगे ही नहीं तो आप क्या करिएगा।
वो कहते हैं कि जब तक दूसरे देश से सहमति नहीं मिलेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। असम में एनआरसी की कार्रवाई ऐसे जटिल मोड़ पर पहुंच गई है और जिस बीजेपी सरकार ने इसे लागू करने का बीड़ा उठाया है उसी के नेता अब सवाल खड़ा करने लगे हैं। लेकिन असम के प्रयोग को दूसरे रूप में उत्तर प्रदेश में दोहराने का स्वरूप क्या होगा, इसकी स्पष्टता अभी किसी को नहीं है। संदीप राय, बीबीसी दिल्ली।
और अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। नवीन नेगी तमाम अखबारों के साथ मेरे साथ स्टूडियो में है। नवीन, क्या खबरें हैं अखबारों में?
जी कुलदीप, आज अखबारों में सबसे ज़्यादा जिस खबर को प्रमुखता दी गई है वह है सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला जिसमें उन्होंने एससी एसटी कानून पर दिए गए अपने पुराने निर्देश को वापस ले लिया। सभी अखबारों के पहले पन्ने पर यह खबर है और काफ़ी अच्छी प्रमुखता से लीड खबर के साथ पर इसको प्रकाशित किया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी उत्पीड़न से संरक्षण कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को जो हल्का करने का उसका जो पुराना फैसला था उसको वापस ले लिया। अब इस कानून के तहत मामला दर्ज होने पर पहले ही तुरंत जो है गिरफ्तारी होगी, ये कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इससे जुड़ी हुई खबर हर एक अखबार में है।
अमर उजाला ने इसी खबर में शीर्षक ये दिया है कि SC ST एक्ट के SC ST के सभी लोगों को झूठा बताना मानवीय सम्मान के खिलाफ, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है इस खबर पर। जी आगे बताएं।
जी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई ये खबर है जो इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित है। इसमें बताया गया है कि कल जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने, जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक कमेटी बनाई गई थी, उसने कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट जो है वह पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि 144 नाबालिगों के को जो है गिरफ्तार किया गया है 5 अगस्त के बाद से, जब से
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाया गया है।
जी हाँ, इसमें 9 साल से लेकर 17 साल तक के जो युवक हैं वो शामिल हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसके साथ ही अखबार लिखता है कि इस कमेटी ने यह भी कहा है कि 144 में से 142 को अब रिहा भी कर दिया गया है, सिर्फ 2 हैं जो अभी जुवेनाइल होम्स में अभी रखे गए हैं।
ये किसी को अवैध हिरासत में नहीं लिया गया है, ये भी इस कमेटी ने कहा है।
इसके साथ ही एक और खबर जो हमारे सामने है वो यह है कि अब ये हिंदुस्तान अखबार है जिसने इस खबर को छपाया कि तेजस में 1 घंटे देरी पर हर यात्री को 100 रुपये का हर्जाना जो है वो दिया जाएगा, यानी कि और 2 घंटे की देरी पर 250 रुपये हर यात्री को मिलेंगे। ये खबर इसमें लिखी हुई है।
ये खबर का जिक्र और कर दूं, अमर उजाला में है पहले पन्ने पर। चूंकि मौसम बदल रहा है और यही वो अब मौसम है जब दिल्ली और NCR में प्रदूषण बढ़ना शुरू होता है, तो ये NGT ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की रोजाना रिपोर्ट देनी होगी राज्यों को। ये अमर उजाला में पहले पन्ने पर खबर है।
और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान भी हर एक अखबार में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि NRC लागू होगा, हिंदुओं को नागरिकता के लिए कानून बदलेंगे। ये उन्होंने कल कोलकाता में उन्होंने ये अपने भाषण में ये बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि सभी हिंदू सिख जैन और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए कानून बदलेंगे। वहीं ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा था कि वह लाखों हिंदुओं को बंगाल छोड़ना होगा, उन्होंने ये बात कही।
गृह मंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री का भी बयान है, SJ का बयान पहले पन्ने पर अमर उजाला में है, और उन्होंने थोड़ी सी तलखी से ये कहा है कि किससे हथियार खरीदना है ये कोई देश हमें ना बताए, क्योंकि उन्होंने कहा कि रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए भारत स्वतंत्र है और इसमें अमरीका को आपत्ति करने की इजाज़त नहीं है।
जी
बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए नवीन नेकी का। आज 2 अक्टूबर है, यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती है। गांधी का जिक्र आता है तो 2 तरह की तस्वीरें जहन में आती हैं। एक ये कि वो निहायत रूखे सूखे, अड़ियल और जिद्दी इंसान थे, और दूसरा उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें जैसे उनकी छड़ी, उनका चश्मा और उनकी घड़ी। लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो गांधी से जुड़ी हुई हैं और जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मसलन संगीत। गांधी के कुछ ऐसे ही कम सुने हुए किस्से सुना रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय।
गांधी का मानना था कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक उसमें संगीत ना हो, बल्कि उनका कहना था कि संगीत नहीं है इसलिए यह लड़ाई उस जोर से नहीं चल पा रही है जिससे उसे चलना चाहिए। वो सत्याग्रह से लोगों को जोड़ने का एक तरीका उसे मानते थे। वो वैष्णव जन गाते थे नरसिंह मेहता का, उनको बहुत प्रिय था ये भजन, रघुपति राघव राजा राम गाते थे। वैष्णव जन को बाद में मिश्र खमाज में लोगों ने ढाला और MS सुबुलक्ष्मी और पंडित जसराज ने उसकी धुन बनाई, उसको गाया। लेकिन गांधी इतने पर ही नहीं रुक रहे थे, वो तमाम तरह के दूसरे गानों में भी उनकी दिलचस्पी थी। मसलन जब वो यरवदा जेल में थे और दलितों के पक्ष में आंदोलन करने जा रहे थे, आमरण अनशन पर बैठने जा रहे थे, तो अनशन पर बैठने से पहले उन्होंने सरदार पटेल को और महादेव देसाई को बुलाया और एक गीत गाने लगे, और वो गीत था उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। और उसके बाद सरदार पटेल और महादेव देसाई सब ने गाना शुरू किया, फिर जेल में जितने और कैदी थे उन्होंने भी गाना शुरू कर दिया और एक पूरा माहौल बन गया। एक किस्सा बहुत मज़ेदार है गांधी की संगीत में दिलचस्पी का, और वो बताता है कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ हिंदुस्तानी संगीत में नहीं थी,
विदेशी संगीत में भी थी, पाश्चात्य संगीत में थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी लंदन में थे और ठहरे थे मुरियल लेस्टर के यहां। उनका एक आश्रम था जिसको किंग्सले हॉल कहा जाता था, पूर्वी लंदन का इलाका था। गांधी रोज शाम को जब भी फारिग होते बाकी काम करने से, बैठके करने से, तो किंग्सले हॉल के सभागार में चले जाते थे। क्यों? इसलिए कि वहां कुछ स्थानीय लोग इकट्ठा होकर एक गाना गाते थे, एक स्कॉटिश गीत, स्कॉटलैंड का एक लोकगीत था जिसको रॉबर्ट बर्न ने बाद में नए ढंग से लिखा, ऑड लैंग साइन, यानी गए जमाने की बात है। गांधी वो गीत सुनने के लिए कितनी बार गए लोगों को अंदाजा नहीं हुआ, और फिर गांधी को पता चला कि हर शनिवार को लोग इस गाने पर नाचते हैं। कांग्रेस के लोगों को जो उनके साथ गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, उनको ये पसंद नहीं आता था कि गांधी इस तरह की चीजों में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने मना करने की कोशिश की, गांधी नहीं माने, और एक दिन शनिवार को जब वहां पहुंचे तो गाना शुरू हुआ ऑड लैंग साइन, और अचानक एक महिला ने हाथ उठा के कहा कि गाना रोक दो। फिर उसने गांधी की तरफ देखकर कहा कि आप हमारे साथ नाचना चाहेंगे? गांधी ने देखा कि वहां जितने लोग थे वो या तो पति पत्नी थे या दोस्त थे, लेकिन एक लड़का एक लड़की साथ में नाच रहे थे। गांधी ने कहा जरूर मैं नाचूंगा, लेकिन एक शर्त पर, कि मेरा जोड़ीदार मेरी छड़ी होगी। और गांधी अपनी छड़ी के साथ किंग्सले हॉल के उस सभागार में नाचे। सिर्फ एक फिल्मी गाने पर कि दे दी हमें आजादी हम बिना खटक बिना ढाल, गांधी मुकम्मल नहीं होते, गांधी की तस्वीर मुकम्मल नहीं होती। उसके लिए दूसरी चीजें जानना भी उतना ही जरूरी है, और शायद हमें गांधी को बेहतर समझने में और 150वें साल में उन्हें बेहतर समझने में मदद करेगी।
गांधी के किस्से मधुकर उपाध्याय की आवाज में आगे भी हमारे कार्यक्रमों में हम आपको सुनवाते रहेंगे। अभी समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको क्रिकेट के मैदान की ओर लेकर चलते हैं, क्योंकि वहां पर आज होने वाला है विशाखापट्टनम में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट मुकाबला। ये मुकाबला सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज खेली गई थी, जिसके अंदर पहला T20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। दूसरे T20 मुकाबले में भारत ने 7 विकेटों से दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया था, तो तीसरे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 9 विकेटों से हरा दिया, जिसके बाद सीरीज ड्रॉ हो गई थी। पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत की जगह रिद्धिमान साहा को जगह दी गई है। और वहीं IPL का बुखार फिर से सवार होने वाला है, क्योंकि 13वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 19 दिसंबर को कोलकाता में होगी। पहली बार नीलामी की प्रक्रिया कोलकाता में होगी। खिलाड़ियों की ट्रेडिंग विंडो 14 नवंबर को बंद हो जाएगी। इस साल नीलामी के लिए कुल 85 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पिछले साल मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फाइनल में पहुंची थी और मुंबई इंडियंस जीती थी।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
BBC समाचार। हांगकांग के स्वेन वान जिले में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एक पुलिस अधिकारी ने गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में एक 18 वर्षीय युवक के घायल होने की खबर है। पेरू में सैन्य पुलिस बल ने सांसदों को कांग्रेस के भीतर जाने से रोक दिया। इससे एक दिन पहले ही राष्ट्रपति मार्टिन विजकारा ने यह कहते हुए संसद को बंद कर दिया था कि विपक्षी सांसद भ्रष्टाचार विरोधी कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं। नीदरलैंड में हजारों किसानों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया है। किसान इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने उन पर नाइट्रोजन प्रदूषण फैलाने का झूठा आरोप लगाया है। दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी छोर से समुद्र की तरफ कम दूरी वाली कम से कम एक मिसाइल दागी है। ब्रिटेन में प्रिंस हैरी की पत्नी मेघन ने एक अखबार के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस अखबार ने उनकी इजाजत के बिना उनका एक निजी पत्र प्रकाशित कर दिया था। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात आज शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। तो आप कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।